आइए जरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पर्सनालिटी में, उनके अंदर ये जो सारा कुछ था, उसके पीछे छुपी हुई चीज क्या थी? आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से इंडल्ज कहूंगी मैं तो, डाली नहीं कहूंगी, इंडल्ज। जैसे आप अंदर जाके कोई चीज को पेनिट्रेट कराते हैं ना, और वो आपकी वो खूबसूरत आते थे, किरदार था, मोहब्बत के आटे से खमीर था आपका, गुंदा हुआ था आपके अंदर, आपके दिल में रहमत थी लोगों के लिए, हर एक को तकलीफ देने वालों के साथ क्या करते थे। आइए सुनिए, अभी हमने हजरत बिलाल का किस्सा पढ़ा, और बिलाल ही के आका का नाम क्या था? उमैया। अब जरा सुनिए, उस उमैया के साथ मोहम्मद अरबी क्या करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, वो आ जाए, उसे हमारी तरफ से अमान है। उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी का आका था, जिन्हें मक्का मुकरमा में बेहद तकलीफें पहुंचाया करता था। बदर के रोज उमैया और इसका बेटा अली हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और अंसारे सहाबा के हाथों वासिले जहन्नम हुए। इसके बेटे सफवान को इनके कत्ल की खबर मिली तो उसे यकीन ना आया। जब इनके कत्ल की तस्दीक हो गई तो इसने उमैर बिन वहब के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार की, जिसे अल्लाह ताला ने अपने खास फजलो करम से नाकाम बना दिया। इसके बाद इसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ साजिशों और मुखालफत में गुजार दी, यानी ग्रज था, गुस्सा था। जब मुसलमान फतेह मक्का के लिए आए तो इनका मुकाबला करने के लिए चंद सर फिरे नौजवानों में सुफान बिन उमैया और इकरमा बिन अबी जहल भी थे। नाम से ही पता चल रहा है कि एक बेटा उमैया का और दूसरा बेटा अबू जहल का, दोनों दुश्मन थे दीन के। इनके साथ मक्का मुकरमा में क्या हुआ, एक मुख्तसर सा वाक्या सुनिए। बनु बकर से ताल्लुक रखने वाला हमास बिन कैस नाम का शख्स, मक्का मुकरमा का एक मुशरिक, कई दिनों से अपने हथियार तैयार कर रहा था ताकि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी सपाह का मुकाबला कर सके, इन सहाबा का मुकाबला कर सके। फतेह मक्का मुकरमा के रोज सुबह सवेरे अपनी बीवी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आज तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक को गुलाम बनाकर लाऊंगा। हमास खंदमा के इलाके की तरफ जा रहा था, जहाँ सुफवान और इकरमा अपने लश्कर के साथ मौजूद थे, यानी एक पूरी प्लानिंग थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। उन्होंने मुसलमानों को रोकने की नाकाम कोशिश की और जल्द ही बुरी तरह शिकस्त खाकर भाग गए। थोड़ी देर गुजरी तो हमास बड़े घबराहट और हवास बाख्तगी की हालत में घर पहुंचा, यानी अभी बीवी को क्या कह के गया कि देखना अभी मैं क्या कारनामा करके आता हूँ। जब वापस आया तो घबराया हुआ, अपनी बीवी को आवाज दी, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। बीवी ने तंजन पूछा, अरे वो तुम्हारा गुलाम कहाँ है? वो बोला, नेक बख्त, आज खंदमा में जो कुछ हुआ है वो तुमने देखा होता, तुम मुझसे अदना से भी मलामत की बात ना करती। यानी औरतों की आदत होती है मलामत कर देती हैं फौरन, बगैर पूरी बात सुने, इसने भी कर दी। क्या हुआ? कहने लगा, सफवान और इकरमा जैसे बहादुर सरदार तक भाग खड़े हुए, यानी वहां इतना बुरा मामला हुआ हमारे साथ, सोनती हुई तलवारों से हमारा इस्तकबाल किया गया, जो कलाइयां और खोपड़ियां यूं काट रही थी कि पीछे सिवाय शोर-ओ-गुग्गा और आंखों बुगा के कुछ दिखाई ना देता था। यानी वहां इनके साथ जंग हुई, लड़ाई हुई। अब आप जरा सी इस बात को ये पहले तो जज्ब कीजिए, रही को मखतूम से ये वाक़ा आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सीर नबुवा में भी है और रोज़ुल अनफ में भी है, अरबी की बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा। अब आप जरा सा इसको अपने साथ लीजिए। सुफवान कौन था? मक्का मुकरमा से भाग गया, जंगी मुजरिम था, जरायम की लिस्ट बड़ी लंबी थी, और जाहिर है कि नबी के कत्ल का इरादा, एक तरफ पीछे उसके बाप ने बिलाल के साथ जो कुछ किया हुआ था उसको सामने रखिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली और आला अखलाक को देखिए, आपने इन जंगी मुजरिमों को भी माफ कर दिया। आप सीरत की कोई किताब जो एग्जेजुरेशन से पाक हो और ज़ईफ रिवायतें और मनगढ़ंत चीज़ों से पाक हो, खोलकर देख लें, किसी की भी लिखी हुई देख लें, अरबी की देख लें, इंग्लिश की देख लें, उर्दू की देख लें, आपको पूरी जिंदगी में नबी की एक मुस्तकिल सुन्नत दिखेगी, और वो क्या था? अफ्वो दरगुजर। आपने हर मौके पे अफ्वो दरगुजर से काम लिया, बड़े बड़े मुजरिमों को भी माफ कर दिया। सुफान के साथ क्या किया होगा? सुनिए, सुफान मक्का मुकरमा से भागा तो सीधा जद्दा का रुख किया। इसकी ख्वाहिश और भरपूर कोशिश थी कि इसे कोई कश्ती या बहरी जहाज मिल जाए जो इसे यमन पहुंचा दे। बॉर्डर था ना, यानी पानी के जरिए जाते थे उस वक्त, तो जहाज तो नहीं थे ना दूसरे। उमर बिन वहाब इसका चचा था, भाई था, जो रसूलुल्लाह के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर सन 2 हिजरी में मदीना तैयबा में मुसलमान हो गया था। सुफवान को जब उमर के इस्लाम के बारे में इल्म हुआ तो इसने कसम खाई थी कि वो सारी जिंदगी उमर से बात नहीं करेगा, क्योंकि ये मुसलमान हो गया। अपने रिश्तेदारों और अजीजों से मोहब्बत तो होती ही है। उमर रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि सफवान अपनी हरकत के बायस आग से खेल रहा है। वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और सुफवान के लिए अमान तलब की। ये उस दौर की एक किस्म की चीज थी, जिसको मिसाल है कि आज के दौर में आप इंश्योरेंस कह लें कि अगर ये बंदा सामने आया तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ एक उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, सुफवान अपनी कौम का सरदार है, वो डर के मारे भाग गया है। आप क्या कहते हैं? आपने क्या कहा होगा? आए तो सही, जरा पुलिस को कॉल करते हैं, 911 बुलाओ, जरा इसको ठीक करें। आपकी जुबाने मुबारक पे जुमला कहता, सुफवान आ जाए, इसे हमारी तरफ से अमान है। उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, इसके जरायम बहुत ज्यादा हैं। यानी एहसास दिला रहा है कि इस काबिल नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं जाके कहूंगा कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने अमान दी तो हो सकता है उसे एतबार ही ना आए। वो कह, शायद तुम बहाने से मुझे ले जाकर कैद कराओगे। मुझे कोई निशानी दे दे जिससे मैं उसको यकीन दिला सकूं कि आप उसको माफ कर रहे हैं। आपने अपनी चादर मुबारक, और दूसरी रिवायत में आता है कि अपना उमामा उतार कर उमर के हवाले दिया, जिसे आपने मक्का मुकरमा में दाखिल होते हुए अपने सर पर पहना हुआ था, कि ये ले जाओ, फिर तो उसको यकीन आ जाएगा ना। खैर, उमर जद्दा पहुंचे। सुफान भी कोई आम आदमी नहीं था, ये मक्का मुकरमा के मारूफ सरदारों और सरमायेदारों में से था, यानी बिजनेसमैन था, मिलियनेरियन था, बिलियनेरियन था आज की जुबान में। सुफान कश्ती की तलाश में था। उमर इसके पास पहुंचे। सुफान उन्हें देखते ही चिल्लाया, कहने लगा, मुझसे दूर हो जाओ और मेरे साथ बात ना करो। क्यों? ओ ग़ुरब अन्नी फला तुकल्लिमुनी। क्यों ये बात की? क्योंकि समझा कि मुझे कैद करवाने आया है, पकड़वाने आया। उमर ने बड़ी हिकमत से काम लेते हुए नहायत खूबसूरत अंदाज अपनाते हुए कहा, कहने गई, यू सफवान फिदा कभी व उम्मी। अरे सफवान, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाह अल्लाह फी नफसी का अंतुखली कहा, अल्लाह के लिए देखो क्यों अपनी जान के दर पे हो, इसे क्यों हलाकत में डालना चाहते हो। देखो, ये नबी का उमामा है, मुबारक है, ये अल्लाह के रसूल की तरफ से एक अमान है तुम्हारे लिए। मैं इनसे तुम्हारे लिए मुआफ़ीनामा लेकर आया हूँ। सुफियान ने गुस्से का इजहार किया, इसने कसम खाई थी कि सारी जिंदगी उमर से बात नहीं करेगा। और इधर उमर बिन वहब की हिकमत तमली कि वो नहायत मोहब्बत और हमदर्दी से सुफान से दोबारा कह रहे हैं, अय्यू सुफान फिदा का अभी व उम्मी, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हु अफसलुन्नास, नबी की तरफ इशारा है, वो दुनिया की अफसल तरीन शख्सियत है। वाह, वो बर्रुन्नास, वो लोगों के साथ सबसे ज्यादा नेकी करने वाले हैं। वाहलमुन्नास, सबसे ज्यादा हलीम और हौसला मंद शख्सियत है। वह खैरुन्नास, और लोगों में बेहतरीन शख्सियत। ये है गवाही। दुश्मन भी गवाही देने पे मजबूर हो जाता था अल्लाह के नबी की सच्चाइयों की। और साथ ही कहने का, इब्न अम्मिक, सुनो तुम्हारे चचाजात भाई हैं, इज्जु इज्जक, उसकी इज्जत यानी उनकी इज्जत असल में तुम्हारी इज्जत है। वह शर्फ हो शर्फुक, उनका शर्फ, उनकी सरबुलंदी तुम्हारी सरबुलंदी है। और मुल्क हो मुल्कुक, उनकी बादशाही तुम्हारी बादशाही है। यानी कि किससे भाग के जा रहे हो? जब वो तुम्हें माफ कर रहे हैं तो अब तुम्हें कश्ती लेकर जद्दा के रास्ते कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। और सुफान को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बलिल इंसान वाला नफसी सीरा आज के बारे में पढ़ेंगे, कि इंसान अपने नफ्स को खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने जितने मर्जी उजर पेश कर दे। सुफान इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी सिफात सुनकर खुल रहा था, जैसे बर्फ पिघलती है ना, उसके अंदर का ग्रज खत्म हो रहा था, उसका जहन बदल रहा था। लेकिन दिल में कुछ खदशात थे अभी भी, जिन्हें वो अपनी जुबान पर ले आया। कहने लगा, इन्नी अखाफ वला नफसी, मुझे तो अपनी जान का खतरा। सुफान को अपने जरायम की शिद्दत का अंदाजा था, इसीलिए उसका ख्याल था कि हो सकता है कि मुसलमान मेरे साथ नरमी का मामला ना करे और बहाने से मुझे ये मक्का मुकरमा ले जाए और वहां ले जाकर कत्ल कर दे, तो मेरी तो जान चली जाएगी। लेकिन उमर ने उन्हें तसल्ली देने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब किया, उससे आपको मुझे अपने प्यारे नबी के अल अखलाक का अंदाज़ा हो सकता है। क्या कहने लगा? हुआ अहलमु मिन ज़ाका वक्रम, वो तुम्हारे तसव्वुरात और सोचों से भी कहीं ज़्यादा बुर्दबार, हौसला मंद और करम और बख्शिश वाले हैं। आज है ये गवाही मेरे आपके लिए, हमारे तो अपने ना दें, वहाँ तो गैर भी देते थे। सुफान ने जब उमैर की बात सुनी, अब थोड़ी सी उसको तसल्ली हुई कि ठीक है, उनके साथ मक्का आ गया। जो ही वो मक्का में गए तो अल्लाह के नबी उस वक्त अपने साथियों के साथ बैतुल्ला में तशरीफ फरमा थे। सुफान अपने घोड़े पर सवार पहुंचा और सवारी पर बैठे बैठे पूछा, मोहम्मद, ये उमैर बिन वहब मेरे पास आया है और इसका कहना है कि आपने मुझे अवान दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफान की कुनिया जो थी वो अबू वहब थी, और अरबों की आदत थी कि जब किसी को इज्जत देना मकसूद होती ना तो उसको उसकी कुनियत से पुकारते। आपने फरमाया, हाँ अबू वहब, उमैर सच कहता है, मेरी बात सच है। सुफान कहने लगा, मुझे 2 माह की मोहलत दे दे, मैं सोच लूँ। अभी भी उसके दिल में धड़का है कि नबी ने इसको माफ नहीं किया और कत्ल करवा देंगे। मैं सोच विचार कर लूँ, मतलब मेरे कत्ल का जो आपने फैसला दिया हुआ था उसको 2 माह के लिए पेंडिंग कर लें, मैं सोचूंगा समझूंगा, फिर मैं या तो मुसलमान होऊंगा या फिर आप जो चाहें। रहीम और शफीक, सरापा अफो करम, आला अखलाक वाले पैगम्बर का जवाब क्या था बताइए जरा, क्या उम्मीद है आपको? इन्ज़िल या अबू वहब, अबू वहब तुम घोड़े से नीचे तो उतरो। सुफान ने कहा, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ नहीं उतरूंगा जब तक आप मेरे सामने वजाहत ना करें। फिर उस पर इमाम अल-अंबिया ने कहा, इन्ज़िल वलका मसीरु 4 अशहर, तुमने 2 माह की मोहलत मांगी है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। कितनी? 4 माह। ये है, लिखिए, जो मोहसिन होते हैं ना उनका दर्जन 12 का नहीं 13 का होता है, उनकी डजन 12 की नहीं 13 की होती है, उनका 100 100 का नहीं 110 का होता है। भरता हुआ देते हैं, वो एक प्याला अपने पास से डाल देते हैं। ये थे मेरे और आपके प्यारे नबी। कहा, तुम इस्लाम के बारे में खूब गौर व फिक्र कर लो। सुफान को अब यकीन आता है कि इसे अमन का परवाना मिल चुका है। वो घोड़े से नीचे उतरा, अपने घर की राह ली। ये शख्स मक्का मुकरमा का सबसे बड़ा असलहा फरोश था। इसके घर में तलवारें, जिरें, ढालें और दीगर सामान हर मौजूद रहता था। अल्लाह के नबी फतेह मक्का के फौरन बाद हुनैन की तरफ रवाना हुए, यानी दौरे कुरान के बाद फारिग नहीं रहना, अगले दिन कोई और महाज। यही अल्लाह के नबी की सीरत से सीखा हमने। आज मक्का फतह, हम कहते हैं अब छुट्टी चाहिए, अब जश्न चाहिए, अब हमें रिलैक्सेशन चाहिए। इस्लाम में छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं, छुट्टी एक ही दिन होगी, जब या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बी की राधियत मर्दिया की पुकार सुनाई दी जाएगी। खैर, ये मक्का से ज्यादा दूर मुकाम नहीं था, करीब ही था। अब एक नए दुश्मन से वास्ता था। आपको असलहे की शदीद जरूरत थी। आपके इल्म में था कि सफवान के पास असलहा मौजूद है। आप फाते थे, आप चाहते फौरन हुक्म देते अपने सालारों को कि जाओ सफवान के घर से जबरदस्ती असलहा ले आओ, क्योंकि वो तो इस वक्त एक किस्म का कैदी ही था ना, आपकी कस्टडी में था। मगर आपका आला अखलाक आपने सुफान को पैगाम भेजा कि हमें असलहे की ज़रूरत है, हमें असलहा दे दो, बेचना है, खरीदना है, किन टर्म्स में देना है दे दो। सुफान बड़ा होशियार था, कहने लगा कि आप मेरे असलहे पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं या उधार ले रहे हैं, इस्तेमाल करके वापस कर देंगे? अल्लाह के नबी का मोहब्बत भरा जवाब, हदीस के अल्फाज पे आप गौर करें ना तो कहा, बल तौवन आरियतन मजमूनतन, तुम्हारी मर्जी और खुशी से आरियतन यानी उधार लूंगा, वापसी की जमानत के साथ लूंगा, यानी मैं ये तुम्हारे हथियार तुम्हें वापस करूंगा और तुम खुशी से दोगे तो लूंगा, अब तुम्हारी मर्जी है तुम दो या ना दो। सुफान को यकीन आ गया, उसने जितनी भी जरूरत थी उतना असला मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमान अल्लाह के रसूल के साथ हुनैन की तरफ गए। कुछ मुअल्लफतिल कुलूब भी साथ हो गए, यानी वो लोग इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड थे लेकिन अभी मुसलमान नहीं हुए। इसमें सुफवान और उसका माँ से शरीक बेटा, यानी उस दौर में आपको पता है कि बहन भाई कई किस्म के होते थे, एक भाई था इसका माँ से सगा, उसका नाम था कलदा, कलदा बिन हम्बल कहते थे उसको, वो भी शामिल हुए। ये लश्कर मैदान हुनैन में पहुंच गया। आज मुसलमानों के पास बहुत लश्कर था, आप सूरह तौबा में पढ़ ही चुके ना, इजा जबतकुम कसरतुकुम, अल्लाह की मशीयत थी शुरू में मुसलमानों के कदम उखड़ गए, लेकिन अल्लाह के नबी और आपके कुछ सहाबा साबित कदम रहे। जब सहाबा में भगदड़ मची और दुश्मन कमीन गाहों से अचानक तीर चलाने लगे तो कलदा बिन हम्बल सुफान के पास आया और शिकस्त पर खुशी का इजहार करते हुए बोला, सुफान देखो आखिर ये तलसम टूट ही गया। सुफान ने अपने भाई की तरफ गजबनाक आंखों से देखा और टोकते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम। दो अल्लाह की कसम, कुरैश का एक शख्स मेरा सरदार और आका बने, ये मेरे लिए बनु ख्वाजन के औफ बिन मालिक के गलबे से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। यानी उनकी लैंग्वेज उसको छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी के जंग का पानसा पलट गया। अब मुसलमानों के हाथ में मैदान था, अल्लाह ने फतह नसीब की और फिर उसके साथ बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा। अब अल्लाह के नबी की जो अखलाक की गवाही थी, उस पे जो वर्ड सुफान ने बोले वो क्या थे, वो सुन लीजिए। कहने का, वल्लाहि लक़द आतानी रसूलुल्लाहि मा आतानी वइन्नहु लअबग़दुन्नासि इलैय्या फमा बरिघा युतीनी हत्ता इन्नहु ला अहब्बुन्नासि इलैय्या। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के रसूल से शदीद बुग़्ज़ रखता था, मगर आपने गनीमत से मुझे बार बार माल अता किया। मुअल्लफ़तिल्कुलूब, वो मुसलसल मुझे माल देते रहे, हत्ता कि वो मेरी निगाहों में कायनात की महबूब तरीन शख्सियत बन गए। अब जरा सा इमेजिन कीजिए, हम किसको देते हैं जिसको दिल चाहे? हम तो सदका खैरात भी उसको नहीं देते जिसको अच्छा नहीं लगे। हम कहते रहने दो, ये लेके भाग जाएगी, ऐसे ही छोड़ो, ये ऐसे ही है, ये काम नहीं अच्छा करती, इस मेड को कुछ नहीं देना। देते उनको थे जिनको देने को दिल भी ना करे। अच्छा, अब आखिरी बात है, सुफवान ने कितनी मोहलत मांगी थी? 2 माह। नबी ने कितनी दी? 4 माह। 4 माह बाद क्या हुआ होगा? 4 माह छोड़ दीजिए, 2 माह तो छोड़ दीजिए, सुफवान आपके हुस्ने सलूक, आपके हिल्म, आपके हौसले और सबसे बड़े आपकी फैयाजी से इस कदर मुतासिर हुआ, 4 माह वाली मोहलत और सोच विचार का वक्त सुकड़ कर सिर्फ 3 हफ्ते रह गया, और हुनैन के फौरन बाद इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था इस्लाम अखलाक के जरिए फैलाने वाला एक वाक्य। मक्का मुकरमा पहुंचा तो लोगों ने इससे कहा, मल्लम जो हाजिर हलका वला इस्लाम लिमन ला हिजरत लहू, जिसने हिजरत का शरफ ना पाया वो बर्बाद हो गया, बल्कि जिसने हिजरत नहीं की इसका तो इस्लाम ही कबूल नहीं। लोग बड़ी जल्दी फतवे देने लग जाते हैं, किसी ने जल्दी में कह दिया कि भाई आपने तो हिजरत ही नहीं की, तो आपको इस्लाम कैसे कबूल होगा। ये बात इसके इल्म में आई तो हिजरत करके मदीना तैयबा गया और आपके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब का मेहमान बना। जब आपको पता चला कि ये आया हुआ इधर, तो आपने फरमाया, हिजरत अबाद अल फतह। पता है मक्का मुकरमा के बाद मक्का मुकरमा से हिजरत खत्म हो गई, यानी अब इसकी जरूरत नहीं, अब मक्का भी हमारा मदीना भी हमारा। तब तो मक्का में दुश्मनों का कब्जा था, तो अब इसकी जरूरत नहीं रही। तो इससे देखिए, अल्लाह के नबी नरमी देते थे, सहूलत देते थे, अपने साथियों से हर दर्जा मोहब्बत करते थे, और जो बात आपके मेरे पल्ले से बांधने की ना, वो लिख लें, जो आज हम नहीं कर पाते अक्सर लोग। आप अपने साथियों की मामूली से मामूली बातों पे तवज्जो देते, मामूली से मामूली कामों में उनको अप्रिशिएट करते और उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेते। पूछा, सफ़वान किसके मेहमान बने हुए हो, किसके घर ठहरे हुए हो मदीना आकर? आपने फरमाया, आपके चचा अब्बास का। फरमाया, नज़लता अला अशद्दी कुरैशिन ली कुरैशिन हुब्बा। सुफान, तुम एक ऐसी कुरैशी शख्सियत के मेहमान बने हो जो कुरैशियों से शदीद मोहब्बत करता है। उनकी भी तारीफ, इनकी भी तारीफ। आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करते थे, लोग गिल्ट में आते, हाँ ये काम खराब हो गया, कोई बात नहीं, हाय मैं ये काम नहीं कर सकी, तो क्या हुआ, आपके हाथ में क्या है, अल्लाह वला मानी अली माते। देखिए, साथी ऐसे होने चाहिए जो जब अपने लीडर के सामने आए ना, तो वो सोच रहे हो कि हमने सब गलत किया, और लीडर क्या कह दे, आपने तो कुछ गलत ही नहीं किया, आपका तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। यानी ये जो मोहब्बत का बॉन्ड है ना, ये आज मिसिंग है। पढ़ना पढ़ाना बहुत है, किताबें बड़ी पढ़ते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स भी हम बोल के लोगों को सिखा भी देते हैं, लेकिन इस तरह का ताल्लुक नहीं दे पाते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने साथियों के साथ था। फिर आपने कहा कि अबू वाहब मक्का मुकरमा वापस चले जाओ, अपने डेरे पर ही क्याम करो और लोगों को दीन की दावत देते रहो। यानी हिजरत तो बड़ी तकलीफ दह चीज़ है ना, अब कहाँ से वो सब उठा के पुट पटा के आप मदीना आके सेटल डाउन होंगे, जाइए मक्का में रहिए, अपने घर में तो बंदा बादशाह होता है, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, ये तो आपको पता ही होगा, जो घरों में होते हैं या कभी बाहर जाएं तो आपकी क्या वैल्यू होती है। आज हरम में जाएं, लोग आपके पाँव पे पाँव दे के चले जाएंगे, किसी को नहीं पता आप कौन है। औकात भी बंदे को इधर ही आके अपनी पता चलती है, जहाँ अल्लाह के दर पे सारे खड़े हो जाते हैं आके। देखिए, समझिए, दावत इल्लाह का पारा है ये। आपने उन्हें कहा अपने घर वापस जाओ, मक्का में अपने घर में रहो और लोगों को दीन की दावत देते रहो। अल्टीमेट ऑफ ऑल इबादत, नमाज, रोजा, हज, जकात, ए बी सी डी, पूरी शरीयत जो आपने इन 28 पारों में पढ़ ली और आज 29 और आगे 30 में पढ़ेंगे, उसका लास्ट रिजल्ट ये है कि लोगों को दीन की दावत हो। ये नहीं पता, सबसे ऊपर की नेकी जो आम मुसलमानों के साथ करने की वो दावत है, और कुफार के साथ फिर जो आखिरी नेकी करेंगे अब उनके साथ जिहाद करेंगे। अब जब अपने मुसलमानों के साथ जिहाद की बातें करें और गैरों के साथ अब मोहब्बत भरी बातें करें, तो आप तो उल्टी छुरी से अपने ही हाथ खुद कर लेंगे। खैर, सुफान ने आपकी बात मानी, मक्का वापस गए और वफात तक मक्का मुकरमा में रहे। और चूंकि ये सरदार थे, फसीहुल लिसान थे, एलोकेंट थे, इनकी जुबान में अल्लाह ताला ने बड़ा रब दिया हुआ था, और इनके खानदान के बारे में मौरखीन लिखते हैं कि ये लोगों को खाना खिलाने वाले और खूब मेहमान नवाजी करने वाले शुरफा थे, और ये सिलसिला नस्लों से चला आ रहा था। एक दिन हजरत माविया ने लोगों से पूछा कि मक्का मुकरमा में सबसे ज्यादा मेहमान नवाज कौन है? जवाब मिला, अब्दुल्ला बिन सफवान। कौन? सफवान के बेटे अब्दुल्ला। कहने लगे, बखिन बखिन, तिल का नारुल्ला तत्फाओ, इस घराने के मेहमान खाने की आग कभी बुझती ही नहीं। यानी इनके चूल्हे पे कुछ ना कुछ पक ही रहा होता है कि एक खा के जाए तो दूसरा आकर खा जाए। यानी ये किस्म का उनको बहुत ही खूबसूरत कमेंट दिया गया। तो बहरहाल सुफान बिन उमैया 42 यानी 42 हिजरा में अमीर माविया की खिलाफत के इब्तदाई याम में वफात पा गए, और इनका मालदार सखी और मेहमान नवाज बेटा अब्दुल्ला बिन सफवान 73 हिजरी में मक्का मुकरमा में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की जानिब से लड़ते हुए शहीद हो गया। तो वाकया तो बेशुमार है, लेकिन आपने देखा कि नबी का हिल्म कैसे काम आया। अगर बिलफर्ज अल्लाह के नबी फतेह मक्का के मौके पे ये सारी रिक्वेस्ट कबूल ना करते, मर चुका होता ना सुफान, खत्म हो जाता, सर काट दिया। तो लिखिए कि उस दिन काफिर की गर्दन कटती, अल्लाह के नबी ने कुफर की गर्दन काटी। इस्लाम की दुश्मनी कुफर से है, काफिर से नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे डॉक्टर मरस का दुश्मन होता है, मरीज का नहीं, पेट तक काट देता है मरीज का कि उसकी बीमारी दूर कर दे। तो अल्लाह ताला हम सबको हिकमत के साथ अमल करने की तौफीक दे।